अध्याय 8। शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा। ऊपर पीपल के विशाल वृक्ष पर कौवे बोलने लगे, नीचे प्रायः 500 व्यक्तियों का समूह गाने बजाने में मस्त झूम रहा था। रात के 10 बजे से लावनी की ओर जो ललकार आरंभ हुई वह अब तक जारी थी। झाजियों चंग की आवाज पर 5 आदमी एक साथ गाते थे, शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा सम्मुख होकर लड़े निकलकर मुंह नाड़ी मोड़ा। और तब एक आदमी अत्यंत सुरीले स्वर से अकेले ही चहकता, तो कंपनी 500 चढ़कर चपरासी आया, गली गली ओ कूचे कूचे नाका बधवाया, मिर्जा पाचू ने कसम खाए के कुरान उठाया। इसी समय फेकू ने बगल में बैठे रूपचंद्र का हाथ दबाकर उससे धीरे से कहा, अब चलना चाहिए। काशी में नीलकंठ महादेव मंदिर के उत्तर की ओर जहां आजकल दरभंगा नरेश का शिवाला है, सदा की भांति होली के ठीक 5 दिन पूर्व उक्त मजलिस आरंभ हुई। सवेरा हो जाने पर भी गायन वादन का क्रम टूटता न देख फेकू का धीरज छूट गया। 2 दिन पूर्व मीर घाट पर लाठी लड़ने में उसका सिर फट गया था, उस पर अब भी पट्टी बंधी हुई थी। रात भर के जागरण से उसके सिर में ही नहीं, सिर के घाव में भी दर्द हो रहा था। रूपचंद की आंखें भी ऊनीदी हो गई थी। अतः रूपचंद ने फेकू का प्रस्ताव तत्काल स्वीकार कर लिया और घर चलने के लिए उठ खड़ा हुआ। दक्षिण की ओर 4 कदम चलकर दोनों दाहिने ओर मुड़े और रूपचंद ने सामने स्थित चौरे की ओर उंगली उठाकर कहा, देखो भाई, वही जगह है जहां रात मेरे हाथ से मलाई का पुरवा झटक लिया गया। रूपचंद 16-17 वर्ष की उम्र का बालक मात्र था, अभी अभी पंजाब से काशी आकर गढ़वासी टोले में आकर बस गया। पड़ोस में जो गाने बजाने का सार्वजनिक आयोजन सुना तो रात को दुकान से लौट कर नहीं गया, वरन आधा पाव मलाई लेकर सीधे नीलकंठ जाने के लिए ब्रह्मनाल की ओर से चौरी की ओर मुड़ा। चौरी के पास पहुँचते ही किसी ने झटक कर पूर्वा उड़ा लिया। चतुर्दिक निगाह दौड़ाने और रात चांदनी रहने के बावजूद कोई नजर न आया। उक्त घटना स्मरण आते ही उसके रोए इस समय भी भर भरा उठे। उसके साथी 20 वर्षीय तरुण पहलवान फेकू ने विज्ञ की भांति सिर हिलाया और कहा, हूँ, रहस्य का रंग और गाढ़ा हो गया। सुबह का रंग भी और अधिक निखर आया था। साग भाजी खरीद और गंगा स्नान कर लोग उस रास्ते लौटने लगे थे। कुछ बूढ़ी स्त्रियां चोरे पर अच्छत फूल भी फेंक रही थी। उन्होंने रूपचंद की बात सुनी, उसकी विवरण विकृति देख और कुछ स्मरण कर स्वयं भी कांप उठी। बगल से गुजरते हुए पुरुषों ने सुना, वे भी सिहर उठे। फेकू यह सब देख मुस्कुराने लगा। एक वृद्ध ने कहा, बेटा, हंसने की बात नहीं, यह बड़े वीर का चोरा है। अरे ठाकुर शिवनाथ सिंह का ना अपने राम को भी सब विदित है, इसी मोहल्ले में पैदा हुए और पले, फेकू ने गर्व से कहा। रूपचंद कभी उस वृद्ध और कभी अपने साथी की ओर देख रहा था। उसने पूछा, क्यों, बात क्या है, आप लोग बताते क्यों नहीं? फेकू ने कहा, चलो घर, वहीं बता देंगे। बालकों की तरह मचलते हुए रूपचंद ने कहा, नहीं नहीं, पहले यह बताओ कि शिवनाथ सिंह कौन थे और यह चोरा क्यों बना? इतनी उतावली थी तो वहीं बैठकर पूरी लावनी ही क्यों न सुन ली? फेकू ने डांटा, गाना वाना मेरी समझ में नहीं आता, पंडित जी आप कहिए शिवनाथ सिंह कौन थे? वृद्ध पंडित ने उत्तर दिया, शिवनाथ सिंह छत्री थे और नगर के विख्यात गुंडे, 24 घंटे डंके की चोट पर 16 परी का नाच कराते थे। छमाचम 6 और 9 की ध्वनि से उनका घर गूंजता रहता था। खुली कौड़ी पड़ती थी, न अट्टी का लासा, सफा खेल खुलासा वाला मामला था उनका। नाम सुनकर लोगों का खून सरद होता था और वह खुद ऐसे तपते थे जैसा जेठ की दोपहरिया में सूरज तपता है। जैसे सूरज का जवाब चंद्रमा है, वैसे ही बाबू बहादुर सिंह शिवनाथ सिंह के जोड़ीदार थे। उन्हीं की तरह बहादुर, उन्हीं की तरह शेर। कहावत है कि घोड़े की लात घोड़ा ही सह सकता है, सो शिवनाथ सिंह का बल बहादुर सिंह और बहादुर सिंह का तेज शिवनाथ सिंह ही सह सकते थे। शागिर्दों की धड़क खोलने के लिए उन्हें 2 दलों में बांट दोनों फागुन भर धर्म युद्ध करते थे। वह धर्म युद्ध ही था, पिता पुत्र लड़ते थे और भाई पर भाई वार करता था। आजकल की तरह बुराई नहीं निकाली जाती थी जिसमें ये सिर तुड़ाए बैठे हैं। वृद्ध ने जिस समय फेकू की ओर उंगली उठाकर कहा, उस समय फेकू ने रूपचंद का हाथ दबा रखा था और उसके ताकने पर कनखी से घर चलने का इशारा कर रहा था। वृद्ध ने यही देख उस पर व्यंग किया था। उधर रूपचंद वृद्ध की एक एक बात सुन नहीं पी रहा था। उसने फेकू के इशारे की उपेक्षा कर दी। वृद्ध
तो पुनः कहने लगा, 100 बरस की बात है, बनारस में नया नया अंग्रेजी राज हुआ था, तब पुलिस नहीं थी, बरकंदाज थे, तब जनानापन नहीं चलता था, मदानेपन की इज्जत थी, मुकदमा बनाया नहीं जाता था, मूछों की गुरेरबाजी के कारण स्वयं बनता था। अंग्रेजी राज्य में देशी ढंग से जुआ खेलने और देशी शराब पीने की रोक थी, आज भी है, परंतु शिवनाथ सिंह के घर के आंगन में 2 फड़ों पर कौड़ी फेंकी जाती थी और एक एक फड़ के सामने शिवनाथ सिंह और बहादुर सिंह एक हाथ में नंगी तलवार खींचे, दूसरे हाथ नाल की रकम उतार कर सामने रखी पेटी में डालते जाते थे। दरवाजा 24 घंटे खुला रहता था, पर क्या मजाल थी कि पंछी भी पर मार सके। वृद्ध ने रुककर सांस ली। रूपचंद आश्चर्य के समुद्र में उपचुप हो रहा था, उसके ऊपर भय की भयावनी लहरें उठ बैठ रही थी। वृद्ध वक्ता मुस्कुराया और फिर कहने लगा, उस समय मिर्जा पाचू शहर कोतवाल थे, वो अपने को दूसरा लाल खां समझते थे, बरकंदाजों की पूरी पलटन लेकर गश्त के लिए निकलते थे, 5 बार नमाज पढ़कर अपने महजबी होने का प्रचार किया था, शिवनासी के कारण उनकी बड़ी किरकिरी होती थी। मिर्जा पाचू और उनके बरकंदाजों ने शिवनाथ और बहादुर से टक्कर ली, लेकिन जैसे चट्टान से टकराकर लहर 100 टुकड़े होकर पीछे लौट जाती है, वे भी पहले तो प्रशस्त और मस्त, लेकिन बाद में परास्त और त्रस्त होकर रह गए। अंत में शिवनाथ और बहादुर के विनाश के लिए मिर्जा पाचू ने कुरान उठाकर कसम खाई और 1-2 कंपनी यानी 500 सिपाही लेकर शिवनासी का घर घेर लिया। शिवनासी बाहर गए थे, बहादुर सिंह मौजूद थे, परंतु उनके हाथ पांव फूल गए। जुआरियों की मंडली भी घबराई। सर्वाधिक चपल साथ ही सर्वाधिक चालाक एक जुआरी ने उछलकर द्वार बंद कर लिया। बंदूकों के कुंदों से सिपाही फाटक पर चोट देने लगे। प्रहार दरवाजे पर नहीं शिवनासी की शान पर हो रहा था। बहादुर सिंह ने उठने का प्रयत्न किया तो जुआरियों ने उन्हें बैठा दिया। तेमे बाहर हगदड़ मची। लोगों ने खिड़की के बाहर जाकर देखा कि सिपाही हथियार फेंक फेंक कर भाग रहे हैं, 10-5 छटपटा रहे हैं और 2-4 ठंडे पड़े हैं। वही ठाकुर शिवनासी खड़े हैं, खून से लथपथ, क्रोध से होठ चबाते और मानसिक चंचलता दबा न पाने के कारण तलवार न चाहते। खिड़की से यह दृश्य देख बहादुर सिंह बहुत लजाए, दरवाजा खुलवा दिया, परंतु शिवनाथ सिंह ने कहा कि जिसने दरवाजा बंद कर मेरा अपमान कराया है, उसका सिर काट लेने के बाद ही अब मैं घर में प्रवेश करूंगा। ठाकुर की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अपराधी हाथ जोड़कर सामने आया, उसे देखते ही शिवनाथ सिंह के मुंह से निकला, अरे पंडित तुम, हाँ धर्मावतार, सिर झुकाए हुए जुआरियों की चिलम भरने वाले ब्राह्मण ने कहा। कुछ सोचकर ठाकुर ने कहा, अच्छा सामने से हट जाओ, अब कभी न दिखाना। पंडित वैसे ही नतमस्तक वहाँ से हट गए। ठाकुर शिवनाथ सिंह भी घर में गए, स्नान कर क्रोध की ज्वाला कुछ बुझाई और तब आंगन में आकर बैठ गए। सामने ही बहादुर सिंह बैठे थे, ना वह इनकी ओर देखते थे और ना यह उनकी ओर। इतने में ही वही ब्राह्मण पुनः दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, सरकार 2 कंपनी फौज आई है, उसमें फिरंगी भी है। मिर्जा पाचू ने कुरान उठाकर कसम खाई है कि मरेंगे या मारेंगे। शिवनासी की भुकटी में बल आ गया, वह उठे दरवाजे की ओर चले, फिर कुछ सोचा और पंडित से कहा, दरवाजा बंद कर दो। पंडित ने मन ही मन मुस्कुराते हुए द्वार बंद कर दिया। इतने में फौज आ पड़ी, मकान घेर लिया गया, गोरे गाली देने और गोली बरसाने लगे। कुछ देर यह क्रम चला, सहसा बहादुर सिंह तलवार लिए उठे और झपट कर खिड़की से नीचे कूद पड़े। अब शिवनासी भी बैठे न रह सके, वह भी कूदे, फिर क्या कहना था। दोनों ने तलवार से वह हाथ दिखाए कि शत्रु मुंह के बल आ रहा। उसी समय किसी गोरे की किर्च बहादुर के कलेजे में पार हो गई। एक दूसरे गोरे की गोली ने भी उसी समय उनकी कपाल क्रिया कर दी। अब तो शिवनासी को और रोष आया, वह जीत तो कर लड़ने लगे। एक तिलंगे की तलवार का ऐसा सच्चा हाथ उनकी गर्दन पर पड़ा कि सिर छटक कर दूर जा गिरा। एक बार तो सिपाही प्रसन्न हो उठे, परंतु दूसरे ही क्षण कर उनके छक्के छूट गए कि गबंद वैसे ही तलवार चलाए और उनका नाश किए जा रहा है। कहते कहते ब्राह्मण रुक कर और फिर तीव्र स्वर में रूपचंद की ओर उंगली उठाकर बोला, जहां आप खड़े हैं वहां एक तमोली की दुकान थी, शिवनासी यहां प्रायः पान खाते थे। कबंद भी तलवार घुमाते वहां पहुंचा जहां चोरा है और अभ्यास वश खड़े होकर उसने एक हाथ तमोली की ओर पसारा।
अरे बप्पा रे, चिल्लाकर तमोली बेहोश हो गया, कमंद भी लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपचंद का चेहरा फीका पड़ गया, उसे बेहोशी आती जान पड़ी। फेकू ने कहा, तब से वहाँ रात विरात खाने पीने की चीजें लेकर आने वालों के हाथ से ठाकुर साहब छीन लेते हैं। रूपचंद पूरा बेहोश हो गया। फेकू को डकार आई और अधपकी मलाई की खट्टी सी हल्की दुर्गंध वायु में व्याप्त हो गई। उधर गली के नुक्कड़ पर लावनी वाले गाए जा रहे थे, शिवनाथ बहादुर सिंह वीर का खूब बना जोड़ा।